किसी प्रकार की आशा ना हो ना किसी प्रकार की निराशा हो। परलोक की आशा भी छोड़ दीजिए, संसारिक सुखों की आशा भी छोड़ दीजिए, इसका दूसरा नाम परलोक है सुखों का। उनकी इच्छा या उनकी आशा या उनके लिए व्याकुल होना उसको भी छोड़ दीजिए। तर्क दुनिया तर्क हुआ, सूफी कहते हैं ये तो तर्क कर लेंगे, आप निर्मल होना चाहते हैं, ईश्वर स्वरूप होना चाहते हैं, ईश्वर हैं ही आप, परंतु तो ईश्वर को आप ढूंढ रहे हैं, ईश्वर तो आपके भीतर है, इसलिए ईश्वर के विचार को भी छोड़ दो। तर्क मौला, वो मौला तो आप हैं ही, ये क्या ढूंढ रहे हैं आप। जब विचारों को छोड़ेंगे मन स्थिर हो जाएगा, बुद्धि शांत हो जाएगी, ऊपर के आनंद के आवरण हट जाएंगे, तो मौला तो अपने आप विकसित हो उठेगा, वो तो आपका वास्तविक रूप है ही, ईश्वर आपका वास्तविक रूप है ही। और आगे जाके सूफी कहते हैं तर्क मौला, तर्क तर्क छोड़ने के विचार को भी छोड़ दो, तो वो क्या होगा, आत्मक मौन होगा। हम मौन की साधना करते हैं, कोशिश करते हैं मन का मौन, परंतु हमारा लक्ष्य जो है वो है आत्मक मौन। जहाँ शरीर का भान नहीं रहता है, मन के विचार नहीं उठते हैं, बुद्धि का तर्क वितर्क खत्म हो जाता है, आनंद की कोई इच्छा नहीं रहती है, सब इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब प्रभु कृपा से, प्रभु स्वयं अंतर में बैठे हैं, बाहर में भी कोई हैं, प्रभु 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 ही रह जाते हैं। इसे और एक कदम और आगे बढ़ना है कि मैं और मेरे प्रीतम एक हैं, परंतु मैं, हजरत ईसा के शब्दों में, मैं उसका पुत्र हूँ। सूफी लोग इसको कहते हैं हम अज ओस्त, मैं उसी से हूँ, बेशक मैं और वो एक हैं, परंतु मैं उसी से हूँ। ये दीनता का स्वरूप है, मैं वो ही हूँ। कभी कभी अहंकार आ जाता है, महर्षि रमन ने लिखा है ये, अहम ब्रह्मस्मि कहने वाला अहंकार में फंस सकता है। वो महान ज्ञानी थे, परंतु व्यवहार ज्ञानी थे। उन्होंने कहा है कि केवल ब्रह्म रह जाना चाहिए, मैं और हूं ये दोनों शब्द खत्म हो जाना चाहिए। आई थॉट, आई एम, आई फीलिंग, ऐसे प्रकार के जो अनुभूतियां हैं, इनमें से एक भी नहीं रहनी चाहिए। क्या रहना चाहिए, प्रभु स्वयं ही जानता है कि क्या रहना चाहिए। हाँ, जिनको संसार की सेवा करनी होती है, वो आत्मा परमात्मा के चरणों से थोड़े समय के लिए दूर हो जाते हैं और हमारी लेवल पर, हमारी सतह पर आ जाते हैं, हम मन के स्थान पर आ जाते हैं। क्योंकि जब तक वो मन के स्थान पर नहीं आएंगे, हमारी बातें नहीं सुनेंगे, हमारा, हमें लाभ नहीं पहुँचेगा। ये उनकी बड़ी महान कृपा है कि हमारी मानसिक स्थिति में, वो भी स्वयं मानसिक स्थिति पर उतर के हमें, हमसे बातचीत करते हैं। वास्तव में उनमें और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है, गुरु परमेश्वर एक हो जान। एक शब्द भी सिर्फ व्याख्या करने के लिए है, कौन गुरु कौन परमात्मा, केवल वही वो है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है भाइयों से, साधना में सफलता चाहते हैं तो संसार में कम फंसिए। बड़ा कठिन है, समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। संस्कार हमारे ऐसे हैं जो हमें फंसाते हैं, हमारी वृत्ति बन गई है। गुरु महाराज कहा करते थे कि शेर नदी में, नदी के बहाव के उल्ट जाता है। आप सबको शेर बनना है, संसार के प्रभाव से उल्टा जाना है। समय बेशक लगेगा, परंतु जीवन के आदर्श को खूब समझ लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, सफलता मिलेगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जल्दी करेगा कुछ गुरु महाराज कहा करते थे, वो गिरेगा। धीरे 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 धीरे। वैसे तो उनका फरमाना था कि ये शरीर कई जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम ये मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य यदि अच्छे कर्म करता है, पांच दस जन्म वो कहा करते थे कि 10 जन्म के बाद कोई सच्चा गुरु मिलता है। सच्चा गुरु मिल जाए तब भी 3-4 जन्म और लग जाते हैं परमात्मा से तद्रूप होने में। तो यहां आकर जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दी ये है कि आप संसार के सार को समझें और जितना आपसे हो सके धीरे धीरे संसार को समझते हुए संसार से मुक्त होने का प्रयास करते रहें। तब भीतर में विचार कम उठेंगे। हो सकता है कि किसी वक्त कोई विचार सिवाय परमात्मा के कोई अन्य विचार न उठे। जब वो स्थिति होगी तो साधना क्या है? कोई विचार उठ नहीं रहा, मन शांत है, शरीर शांत है, बुद्धि शांत है, कोई तर्क वितर्क नहीं है, कोई प्रयास नहीं, शरीरक मानसिक प्रयास नहीं है, वो स्थिति क्या होगी? वही तो स्थिति नाम की है। आप क्या करेंगे? उस सच्चे नाम की प्राप्ति के लिए ही हम सब साधन कर रहे हैं और साधन के प्रति हम सतर्क हों, सचेत हों कि हमारा साधन किस प्रकार का होना चाहिए। ईश्वर के प्रति जितनी अधिक लगन है और संसार के प्रति जितना अधिक वैराग है उतना ही अधिक आपको ईश्वर की समीपता प्राप्त होगी। दोनों बातें करनी होगी। कहते तो हैं कि सत्संग में संत मत में घर से भागना नहीं सिखाते हैं, परंतु ये भी वो कहते हैं कि उतना संसार में फंसो जितना आवश्यक है, अनावश्यक मत फंसो। परंतु संसार की प्रकृति स्वभाव ही ऐसा है, कोई व्यक्ति इसके प्रभाव से बच नहीं सकता है। बड़ा कठोर साधन करने की जरूरत है संसार के प्रति। अब हम बच्चों को कहें कि अभी से वैराग्य शुरू कर दें, ये हमारी भूल है। परंतु जब मेरी आयु के व्यक्ति हैं उनको तो मुझे कहना ही होगा कि संसार के प्रति कम से कम इस आयु में तो हमारा राग छूट जाए। 24 घंटे संसार की बातें करते रहते हैं और इच्छों का परमार हमारे हृदय में है, ये हो जाए, वो हो जाए, वो व्यक्ति मेरे अनुकूल चले, मेरी बहू मेरे कहने में चले, मेरा बेटे मेरे कहने में चले, मैं ही घर का नेता हूँ, ये सब बातें करते रहते। आपने पकड़ा है परमात्मा के साथ क्या प्रेम किया है आपने, ये सब परिवार में है, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, इसमें यही संसार है, दुख सुख का संसार है। परंतु ब्रह्मचार आश्रम हमारे महापुरुषों ने बनाए हैं वो गलत नहीं थे। ब्रह्मचर्य है, 25 वर्ष में आप विद्या ग्रहण करें गुरुकुल में जाकर, वहाँ से शुद्ध विद्या ग्रहण करें, अच्छा आचरण ग्रहण करें, तो 25 वर्ष गृहस्थ में रहें, गृहस्थ का भोग भी शास्त्र के अनुसार करें। हम सब भूल गए हैं, पुरानी संस्कृति को सब भूल गए हैं, किसी को पता नहीं है कि शादी का क्या महत्व है। वास्तव में जब आप फेरों में बैठते हैं यदि ध्यान से सुने, हंसी मिजाज उस वक्त ना हो, तो आप देखेंगे कि विवाह भी एक साधना का रूप है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। पच्चीस वर्ष धर्म के अनुसार ये जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके बाद 25 वर्ष वानप्रस्थ धीरे धीरे संसार से हटते चले जाइए और जितना अधिक हो सके प्रभु के चरणों की ओर बढ़ते चले जाए, और 75 से 100 वर्ष तक 25 वर्ष संन्यास है, पूर्ण संन्यास है, अर्थात त्याग है, सब बातों का त्याग। शारीरिक सुविधाएं हैं उनका भी त्याग, मानसिक असुविधाएं हैं उनका भी त्याग, दुख सुख दोनों का त्याग करना है। केवल एक ही लक्ष्य है, सर मुंडवा देना, अपना सन्यासी बन जाना है। कोई मन में चाह न रहे। वास्तव में हम देखते क्या है संसार में, बूढ़े आदमियों के हृदय में जितना मोह और लोभ होता है युवक व्यक्तियों में ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है कि वो अपने जीवन के प्रति सतर्क नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, इच्छाएं और बढ़ती हैं, आशाएं ज्यादा बढ़ती हैं, इच्छा की बजाय आशाएं बहुत बढ़ती हैं। फलाना व्यक्ति मुझे क्यों नहीं हाथ जोड़ के मिलता है, वो मेरे से पूछ के फलां काम क्यों नहीं करता है, उसके भीतर में एक सूक्ष्म अहंकार उभरता है, मैं उभरती है, सारा परिवार चाहे 40-50 आदमी हो वो उसके अधीन रहे, तुमने क्या लेना है? मृत्यु सामने खड़ी है, सन्यासी वही बनता है मृत्यु का साधन करता है, वो मृत्यु को याद रखता है। ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, वो भी आगे बच्चों वाले पोते पोते वाले भी हो जाते हैं, आपने क्या लेना इन बातों में? कभी आपको वो याद कर लेते हैं, आप उनसे बैठ जाइए, नहीं तो अपनी मौज लीजिए। तो सच्चा वैराग, सच्चा त्याग जीवन के अंतिम दिनों में सबको करना चाहिए। फिर पढ़िए इस बात के प्रति लगन हो, व्याकुलता हो, यही तो गोपियों ने उद्धव जी को समझा, तू तो खुशकी है तेरे अंदर में, तो खुशकी है मारुथल है, प्रभु के प्रति प्रेम तो है ही नहीं। भगवान ने जानबूझकर उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा, ये नहीं कि भगवान ज्ञान पद्धति के विरुद्ध से, नहीं ऐसी बात नहीं है, परंतु वास्तविकता समझनी चाहिए ज्ञान पद्धति की। प्रेम आधार है, आत्मा का रूप ही प्रेम है, आत्मा का रूप ही प्रेम है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तर्क वितर्क ज्ञान नहीं है, तर्क वितर्क से परमात्मा नहीं मिलते हैं। तो मन में संसार के प्रति वैराग वृत्ति होनी चाहिए और परमात्मा के प्रति अनुराग वृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए। धीरे 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 चलते चले जाइए, आप विश्वास रखें गुरु महाराज के इन शब्दों को आप पालन आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अतिरिक्त विचारों को कम करने के लिए मैं बारंबार कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में है ये, कि मन को द्विंदों से मुक्त रखो, अर्थात कुछ देखो, कुछ सुनो, कुछ छुओ, कुछ खाओ या कोई भी व्यवहार करो, उसकी तुरंत प्रकृति नहीं करो, प्रतिक्रिया नहीं करो, रिएक्शन नहीं करो। जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा तब जाके मन स्थिर होने लगेगा। उस स्थिर द्विंद रहित द्विंद मुक्त बुद्धि को भगवान ने लिखा, बुद्धि का शब्द प्रयोग किया है गीता में, उसको आत्मा में विलय कर दो। यदि आप द्विंदों में बुरी भलाई में फंसे रहेंगे तो ये मन तो कभी भी अपनी चंचलता नहीं छोड़ेगा। और यही प्रेरणा महात्मा बुद्ध ने हमें दी, उनकी साधना है विवेचना, विवेचना के अर्थ हैं प्रतिक्रिया नहीं करो। इतने वर्ष उन्होंने साधना की, महापुरुषों की सेवा में भी गए, इनको संतुष्टि नहीं हुई कि सत्यता कैसे प्राप्त हो। साधना के अंतिम दिनों में 7 सप्ताह में उन्होंने मेडिटेशन मनन किया है, उस मनन में इनको ये बात सूझी है कि मन की चंचलता को खत्म करने के लिए यही एक उपाय है। जब इसकी अनुभूति हो गई, स्वयं भी इसका अनुभव कर लिया, इसका अभ्यास कर लिया, तो इनसे रूठे हुए 5 मित्र थे बनारस में, वहाँ दौड़े दौड़े गए उनको मिलने के लिए, मैंने आपके लिए एक साधन ढूंढ लिया है, आप चिंता मत करें, दौड़िए नहीं, मुझे छोड़िए नहीं। ये इसका अभ्यास करना चाहिए सब लोगों को। हम 24 घंटे प्रतिक्रिया करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, उस वक्त भी प्रतिक्रिया करते रहते हैं, संसार की प्रतिक्रिया करते रहते हैं, ईश्वर की नहीं। तो विचार तो उठेंगे, आप नहीं रोक सकते, यदि बुराई भलाई में फंसे रहेंगे तो आप कभी विचारों से मुक्त नहीं होंगे। हाँ, परमात्मा की कृपा हो जाए, आपके हृदय में वैराग उत्पन्न हो जाए, संसार की कोई बात अच्छी ना लगे, आपको नींद भी ना आए अपने प्रीतम के मिले बगैर, वो उस हालत में तो आपको परमात्मा की समीपता मिल सकती है। परंतु साधारण जैसा हम जीवन जी रहे हैं हम सब लोग, उसमें आप कहें कि परमात्मा आपको मिल जाए, कठिन है, असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। पढ़े लिखे व्यक्ति इस बात को समझ जाएंगे, अच्छी तरह से समझ जाएंगे, परंतु ये कोई ऐसी कठिन बात नहीं है, सब व्यक्ति समझ सकते हैं। जहाँ जितने भी भाई बहन मिलने आते हैं सब यही बात करते हैं, कोई बुरा है कोई भला है, कोई ऐसा है ऐसा। बुरा नहीं मनाए आप लोग, हम यहाँ सत्संग में आए हैं तो कुछ प्रसादी लेकर जाना चाहिए, इस आनंद की अनुभूति होनी चाहिए सत्संग में बैठकर, प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। और यहाँ बैठे हुए ही घर के विचार आ रहे हैं, हमारा दिल्ली में आरक्षण हो गया होगा, हम पुरानी गाड़ी में जाएंगे, उस समय पहुँचेंगे, करेंगे ढींग करेंगे, ऐसे विचार उठते हैं तो प्रतीक है कि हमारा रुझान ईश्वर के प्रति पूर्ण नहीं है, अभी मंजिल दूर है, मंजिल बहुत दूर है। मेरे मुख से कोई बुरा भला शब्द निकल गया हो तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। ये आंतरिक संतुलन ये एक ऐसा विषय है कि हमारे देश का साहित्य भरा हुआ है, तराजू का जैसे संतुलन होता है, बीच में एक सुई होती है, उसको हिलना नहीं चाहिए। गुरु महाराज ये तुलना दिया करते हैं, मन की स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए, कोई बुराई हो गई है, किसी ने हमें कुछ हमारा अपमान कर दिया है, या हमें कोई पैसा आ गया है या कोई सुख आ गया है, तो हमारा मन शांत रहना चाहिए, ठीक है सब उसकी कृपा है। दुख आता है, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, सुख आता है, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद करते रहना चाहिए, धन्यवाद करते रहना, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। ये सूफियों का तकिया कलाम है और मुख्य साधन है उनका, प्रत्येक परिस्थिति में हर हालत में शुक्र 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 शुक्र, भूखे रह के भी शुक्र कर रहे हैं, सूली पर चढ़ के भी शुक्र कर रहे हैं। सूली पर चढ़ के कितना दुख होता है, क्या हम और आप मन को संतुलन में रख सकते हैं ऐसी स्थिति में? परंतु मंसूर कहता है शुक्र है शुक्र है अल्लाह शुक्र है शुक्र है। शरीर से खलड़ी उतारी जा रही है, चमड़ी उतारी जा रही है, कितना कष्ट होता है, परंतु उस महापुरुष के मन से जबान से शुक्र है एक दो एक दो। अपनी शरण में